نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. عید کی بھی آپ کو کچھ سنتیں بتا دیتی ہوں تاکہ آپ سنت کا اجر بھی پا سکیں، سنت کے مطابق عمل بھی کر سکیں. ایک ایک نماز عید کے لیے جانے سے پہلے عید یہ جو غسل ہے وہ کرنا مستحب ہے. یہ نہیں ہے کہ جب ہم نے شام کو تیار ہونا ہے کسی کے گھر جانے کے لیے عید پارٹی کے لیے تب میں شاور لوں گی، نہیں. عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے، بعض لوگ تو جاتے ہی اتنا لیٹ ہیں، بستر سے اٹھتے ہیں وضو کیا اور پہنچ گئے، تو ایسے نہیں کرنا. غسل کرنا یہ مستحب ہے. پھر عید کے لیے بہترین لباس پہن کے جانا مستحب ہے. اگر آپ کے پاس نئے کپڑے ہیں وہ پہنے، نہیں ہے تو پھر جو سب سے اچھا آپ کا لباس ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر اپنا سب سے خوبصورت لباس پہنتے تھے، سب سے اچھے کپڑے پہنے. اور جاتے وقت نماز کے لیے روانگی سے جاتے وقت کچھ کھا کے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہ تھا کہ آڈ نمبر کی میں کھجوریں کھاتے تھے، تین یا پانچ یا سات، ٹھیک ہے، یا اس سے کم یا زیادہ اس میں، مگر کھا کے جاتے تھے. جتنی بھی آپ نے کھانی ہے لیکن آڈ نمبر میں، ٹھیک ہے. تو یہ کیوں ہم نے کھا کے جانا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عید الفطر کے دن صبح سویرے کھجوریں کھانے سے بھی بندہ یہ بتاتا ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کی فوری تعمیل کی. انسان اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اے میرے مالک، آپ نے جب روزے رکھنے کا حکم دیا تھا تو میں اس وقت روزے سے ہوتی تھی، اب آپ کا حکم یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دو، عید کے دن نہیں رکھنا، تو اب میں صبح سویرے آپ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں کہ فوراً میں کھجور کھا رہی ہوں. میرا دل نہیں بھی اگر چارہ نہ کھانے کا، ایک کھا لیں بے شک، کھائیں ضرور. کہ میں نے 29-30 دن تیرے حکم سے چھوڑا تھا، آج تیرے ہی حکم سے میں کھا رہی ہوں. اگر کھجور نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا لیں پھر، ٹھیک ہے، اور نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو پانی ہی پی لیں، لیکن کھا کے ضرور جائیں تاکہ آپ یہ سنت پوری ہو جائے. اور پھر اسی طرح عید کی نماز کے لیے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی ہے، ایون عورتوں کو بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عورتوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عید گاہ لے کے جائیں، جوان لڑکیوں کو بھی، حیض والی، پیریڈ والی بھی جائیں، یعنی چاہے آپ نے نماز نہیں بھی پڑھنی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جائیں، صحیح مسلم میں ہے یہ روایت، اور پردہ نشین بھی جائیں. ہاں، حیض والی عورت ظاہر نماز سے الگ رہے گی، لیکن وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو، اس کے لیے وہ جائیں. تو حضرت ام عطیہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی کے پاس جلباب نہ ہو تو. یہ ہوتا ہے نا کہ اب خیر ہمارے پاس تو یہاں پہ اتنے جوڑے ہوتے ہیں کہ ایک کیا ہزاروں جوڑے الماریوں میں لٹکے پڑے، تو ہمارے تو گھروں کے پردے ہی اتنے بڑے بڑے ہیں. اب وہ فرما رہی ہیں کہ اگر کسی کے پاس جلباب نہیں ہے، چادر نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی ہمسائی سے، اپنی بہن سے کہے وہ اس کو چادر اڑا دے، اس کی بہن اس کو چادر دے دے. مگر یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چادر کے بغیر چلی جائے، ٹھیک ہے، یہ آپ بات نوٹ کریں یہاں. کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں نا، اچھا ہمارے پاس تو خیر ہیں چادریں، پھر بھی نہیں ہم لیتے، مگر ہمارا یہ اکثر خیال ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، عید کا دن ہے، اب تو ظاہر ہے رمضان تو ختم ہو گیا، تو اب عید کے دن تو ہم اب خوب بس تیار ہو کے ایسے جائیں گے کہ بس خدا کی پناہ ہے کہ پھر پتہ ہی نہ چلے کہ رمضان کبھی آیا بھی تھا یا نہیں تھا. تو ایسا نہیں کرنا بالکل، کیونکہ رمضان گزرا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ختم ہو گیا، اللہ کا حکم تو وہیں کا وہیں ہے نا. اس لیے اپنے جو جلباب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی، جس کے پاس نہ ہو وہ نہ پہن کے جائے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، وہ اپنی ہمسائی سے لے لے، اپنی بہن سے لے لے، लेकिन पहन के जरूर जाए। और हमारा हाल ये होता है कि जब वहां पे पहुंचते हैं देखते हैं अल्लाह अकबर, तो बजाय हम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील कर रहे हैं कि हम वहां पे पहुंचे और हम अजर कमाएं, उल्टा गुनाह कमा के आ जाते हैं, बहुत सख्त गुनाह कमा के आ जाते हैं। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह की लानत हो देखने वाले पर और जिसकी तरफ देखा जाए। अल्लाहु अकबर, क्या मतलब है? देखने वाले पे भी, वो आंख जो देख रही है, जिसकी तरफ उठी है उसकी, उसके ऊपर भी, दोनों पे लानत है। तो अब सोच लें जब घर से ऐसे सज संवर के निकलेंगे कि ईद के कपड़े हमने दिखाने हैं लोगों को वहां पे, तो जितनी नजरें पड़ रही हैं उनके ऊपर तो लानत है ही है, उस औरत पे भी लानत पड़ रही है। ईद होते ही अल्लाह की रहमत से महरूम हो गए, पता नहीं कितने लोग नजर उठाते होंगे और क्या उनके दिल में जज्बात आते होंगे, तो कितनी लानतों के मुस्तहिक हो गए। तो हम तो अल्लाह की रहमत चाहने के लिए गए, हम इसलिए गए कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे और अल्लाह की रहमत हो हमारे ऊपर। हम इसलिए शरीक हुए थे उसमें ईद की नमाज में कि लानत लेके आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत रास्ता पेरास्ता होके ना महरूमों में सज धज के चलती है, यानी इंसान पूरे अपनी नए ईद के कपड़े पहने, मेकअप किया, ज्वेलरी पहनी, ये पहन के सब ना महरूमों में चले गए सज धज के, कयामत के दिन वो मुजस्समे तारीकी होगी, वो अंधेरा ही अंधेरा होगा, उसको कोई नूर नहीं मिलेगा, पुल से रात से गुजरेगी कैसे फिर वो बताएं, अगर उसके पास कोई नूर ही नहीं होगा, वो तो खुद तारीकी होगी, मुजस्समे तारीकी होगी खुद। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें से बदतरीन औरतें वो हैं, बदतरीन, वर्स्ट वर्स्ट, जानना चाहते हैं कौन है? वो जो बेपर्द होके घरों से निकलती है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि वो वर्स्ट है, तो आप बताएं उसके नेक होने का क्या, कौन उसकी कहेगा कि ये नेक है, ये बड़ी अच्छी है, चाहे हम कितना ही कहते रहे नहीं जी हमारे तो दिल के अंदर नेकी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया बदतरीन है वो, हम कहते हैं इसमें कोई इशू ही नहीं है, इतनी दकियानूसी की क्या जरूरत है, इतने बैकवर्ड होने की क्या जरूरत है। फरमाया वो मुनाफिक हैं और उनमें से कम ही जन्नत में जाएंगी। अल्लाह अकबर। तो अब आप इन अहादीस से अंदाजा कर लें कि जब हम ईद की नमाज के लिए जाएं, अगर हम बेपर्द होके गए तो हम वापस जो लौट रहे हैं क्या लेके लौट रहे हैं, लानतें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बद्दुआ है वो, और इसी तरह मुजस्समे तारीकी क़यामत के दिन हो सकते हैं। अल्लाह ताला ऐसे अंजाम से महफूज रखे। क्या फ़र्क पड़ता है, दो चार लोग आपको देखेंगे तारीफ ही नहीं करेंगे, क्या क्या इससे नुकसान हो गया मेरा, कुछ भी नहीं। देखें जिसके लिए आखिरत की कामयाबी बड़ी हो जाती है ना, सबसे बड़ी चीज़ उसको आखिरत की कामयाबी लगने लगती है, उन लोगों की ये छोटी छोटी बातों और तारीफों और इसका हरीस नहीं होता, फिर वो ये नहीं कहता कि हाय बस लोग मुझे कह दें किसी तरह के बड़ी प्यारी लग रही है। यही चाहते हैं ना हम, लोगों की नजरों में सताइश, लोगों की नजरों के अंदर अप्रिसिएशन अपने लिए। कितना घाटे का सौदा है, कितनी छोटी चीज के ऊपर हम बिक गए। तो इंशाल्लाह इससे महफूज अपने आप को रखना है, जब आपने जाना है तो अपने आप को चादर में लपेट के, यानी इतनी बड़ी चादर हो और जेब जीनत के बगैर जाना है। घर में आए औरतों में आप जरूर करें, जरूर अच्छे कपड़े पहने, जरूर दिखाएं अपने खूबसूरत कपड़े पहन के कि ईद है, ईद का पता चलना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि ईद का पता बाहर वालों को जाके दिखाएं कि मर्द देखें, ठीक है। अच्छा, तो सारी औरतें ईद के मौके पे ईद का जाएंगी, हाँ वो शादीशुदा हैं, चाहे वो गैर शादीशुदा हैं, जवान हैं, बूढ़ी हैं, पीरियड्स वाली हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो वो सब जाएंगी। और इसका हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिस चीज का हुक्म दे दिया हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो क्या हो जाती है, वाजिब हो जाती है, ठीक है। इसी तरह खुशबू लगा के नहीं जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत खुशबू इस्तेमाल करके लोगों के पास से गुजरेगी, अब हम परफ्यूम इतने छिड़का लें और फिर जाएं कि नहीं मैं मस्जिद जा रही हूं तो मैं परफ्यूम तो लगाऊंगी, तो फरमाया वो औरत बदकार है जो औरत ऐसी खुशबू इस्तेमाल करके लोगों के पास से गुजरे ताकि उसकी खुशबू उन तक पहुंचे, वो औरत बदकार है। अल्फाज हदीस के हैं, वो जानिया है, नसाई में है ये हदीस। तो अगर आपने खुशबू लगानी तो आपकी वो खुशबू होनी चाहिए जो आप तक रहे, जो आपके कोई गले मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा तब उसको आ सकती है, फैलने वाली खुशबू ना हो। ठीक है, फिर इसी तरह बच्चों को भी ईद की नमाज के लिए ले जाना सुन्नत से साबित है। तो किसी को भी घर नहीं छोड़ना कि चलो आज सो रहे हैं तो सोते रहे, छुट्टी का दिन है, ईद का दिन है, आराम से उठेंगे, कौन सा किसी के घर दावत पे जाना है। तो नहीं, ईद की नमाज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और तकबीर रात पुकारते हुए आपको ईदगाह की तरफ जाना है। ठीक है, और नमाज अदा करने तक, जब तक नमाज शुरू नहीं हो जाती उस वक्त तक तकबीरें कहते रहना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर लेते थे तो तब कहना बंद करते थे। और स्टार्ट कब करनी है तकबीर कहना? जब शव्वाल का चांद नजर आ जाए उस वक्त से बस आप तकबीर कहना शुरू कर दें। यानी अगर तो कल ईद है तो आप आज मगरिब होगी ना, उसके बाद जाहिर है शवाल का चांद नजर आ जाएगा, तो फिर आप तकबीरें कहेंगे। फिर कब तक कहते रहेंगे? जब तक आप नमाज नहीं पढ़ लेते। ठीक है, तकबीरात उम्मीद है सबको आती होंगी, इनशाला हम अपनी वेबसाइट पे भी लगा देंगे, कोई अगर एडमिन्स में से इनशाला लगा दे, फ्रंट पे लगा देंगे, आप वहां से भी प्ले कर सकते हैं। ताकि आप, मैं अपने घर में ये करती हूँ कि जब सुबह को हम लोग तैयार हो रहे होते हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए, तो जस्ट रिमाइंडर के तौर पे तो मैं ऊंची आवाज़ पे कंप्यूटर पे लगा देती हूँ, स्पीकर साथ रख देती हूँ। अब चलते फिरते बच्चों को फिर याद आ जाता है बार बार, फिर वो एक समा भी बन जाता है कि जो है ना कि ईद का समा है, क्योंकि रोज़ थोड़ी तकबीरात लगती हूँ। तो उससे ये फ़ायदा होता है, एक तो सब घर वालों को याद रहता है तकबीर पढ़नी, वरना थोड़ी देर पढ़ेंगे फिर उसके बाद फिर भूल जाएंगे। लेकिन जब वो इतनी प्यारी तकबीरात चल रही होती है, इतना खूबसूरत वो एक समा बन जाता है ना। और क्योंकि हम ये चाहते हैं ना कि हमारे बच्चों को हमेशा ये चीज़ें याद रहें, अभी से उनके जहनों में डाल देंगे ना तो इनको याद रहेंगी कि इस तरह से होता था, हमारे वालदैन इस तरह से हमें उन्होंने सिखाया था, वो ये काम करते रहेंगे, हमारे लिए सदका जारिया रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे आपने करना है। इसी तरह अब जो पीरियड्स वाली औरतें ना, वो भी तकबीरात तो पढ़ सकती हैं। ठीक है, उनको कोई मना नहीं है तकबीर पढ़ना, नमाज तो नहीं पढ़ेंगे, तकबीर तो पढ़ते हुए जाएं। इस तरह जब आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं ईदगाह की तरफ, तब भी तकबीरें पढ़ते हुए जाएं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, फिर ये है कि जब ईद की नमाज आपने पढ़ने के लिए जाना है तो उससे पहले कोई नफल नहीं पढ़ने, घर में कोई नफल पढ़ रहे हैं, कोई आप में से कोई हो सकता है इशराक पढ़ने खड़ा हो जाए, क्योंकि 9-10 बजे भी हो रही है ईद की नमाज यहाँ पे, तो कोई इशराक पढ़ने खड़ा हो जाए या कुछ है, नहीं, फजर के बाद अब आपने उसके बाद ईद की नमाज ही पढ़नी। और अब ईद की नमाज आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद जाहिर है फिर मुबारकबादें दी जाती हैं। तो सहाबा कराम उस वक्त एक दूसरे को क्या कहते थे, सहाबा जब एक दूसरे के साथ मिलते थे ना ईद के दिन, मुलाकात करते थे, तो एक दूसरे से फरमाते थे तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनका, अगर ज्यादा है तो वह मिनकुम हो गया, कि अल्लाह कबूल कर ले हमसे और तुमसे। ठीक है, तकब्बल अल्लाह, तकब्बल लिखें अल्लाह मिन्ना, मिन ना व मिनकुम। ठीक है, इसी तरह एक ईद के दिन की सुन्नत यह है कि जब ईदगाह की तरफ जाएं तो एक रास्ते से जाएं और वापस आएं तो दूसरे रास्ते से आएं। और अगर कोई किसी वजह से नमाज़े ईद अदा ना कर सके तो फिर वो 4 रकत पढ़ ले। ठीक है, घर में ही फिर पढ़ लें 4 रकत। लेकिन सबसे ज्यादा देखें, इतनी ज्यादा ताकीद है, ये नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा किसी के पास चादर ना हो चलो वो ना जाए, लेकिन बाकी लोग तो जाएं, अच्छा जिसके पीरियड्स हों चलो वो ना जाए, वो घर में ही पढ़ लें लेकिन बाकी लोग जाएं, ऐसा कुछ नहीं फरमाया। फरमाया सारे जाएंगे, सब जाएंगे, पर्दा नशीन औरतें जो यानी इतनी पर्दे में रहती हैं कि वो किसी को किसी के बाहर जाती नहीं है, घरों के अंदर ही मुकीम रहती हैं, तो वो भी उस दिन निकले। इतनी ज्यादा ताकीद जिस काम की हो, हमने अक्सर देखा है हमारे मुल्कों में तो बिल्कुल इसकी अवेयरनेस है ही नहीं, पे तो सो सो के ईद का दिन गुजार देते हैं, बस उठते हैं 10-11 बजे, उसके बाद किसी ने बुलाया तो उस वक्त तैयार होंगे, ईद के कपड़े पहनेंगे, कहेंगे उससे पहले क्यों वेस्ट करने कपड़े। तो नहीं, ऐसा नहीं है, सुबह ही आपने गुसल करना है, खा के घर से एक चीज जाना है। अब मुझे पता है कि ये जाहिर है 29-30 दिन हमने इस टाइम पे कुछ नहीं खाया होता तो दिल भी नहीं चाहता, लेकिन हमने क्यों खाना है, हमने दिल का नहीं सुनना। हमारे लिए दिल की पसंद नापसंद क्या चीज है, हमारे लिए तो अल्लाह की पसंद सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो अल्लाह का हुक्म आ गया तो अब हमारा दिल नहीं भी चाह रहा, कोई मसला नहीं, हमने फिर भी खाना। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी ईद को भी वो ईद बना दे जिसमें हम गुनाहों से धुले हुए हों, गुनाहों से पाक हो चुके हों, हमारी बख्शिश हो चुकी हो, जहन्नुम से आजादी मिल चुकी हो, तभी हमारी ईद ईद है, तभी हमारी खुशी खुशी है। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला शव्वाल का महीना शुरू हो जाएगा, तो ईद के दिन के बाद आप शव्वाल के रोजे रख सकते हैं, 6 रोजे होते हैं शव्वाल के। अगर आपने रमजान के सारे रोजे रखे और शव्वाल के भी 6 रोजे रख लिए तो आप साइमुद्दहर हो जाएंगे, यानी पूरे साल के रोजेदार, क्योंकि हर नेकी के बदला 10 गुना दिया जाता है ना, तो 30 रोजे रमजान के मल्टीप्लाई विद 10 कर दें 300 हो गए, 6 रोजे शव्वाल के मल्टीप्लाई विद 10 वो 60 हो गए, तो 360 हो गए ना, तो इस्लामी महीने के इतने ही दिन होते हैं, तो 360 डेज वो रोजे से रहा, तो पूरे साल का रोजेदार हो गया। तो अब आपका ये सवाल होता है अक्सर कि पहले हम अपने फर्ज छूटे हुए रोजे रखें कि ये शव्वाल के रोजे रखें, तो बात ये है कि अगर तो आपके 9-10 दिन के पीरियड्स होते हैं तो उसके बाद आप फारिग होते हैं, इतने आपके छूटे हुए, तो अब आपको लग रहा है कि मैं शव्वाल में अगर ये रखूंगी रोजे 9-10 दिन के ये रख लिए, फिर उसके बाद मैंने बाकी दिन पार्टियों में गुजर गए, फिर उसके बाद मेरे दोबारा पीरियड्स आ गए, तो शव्वाल का महीना तो सिर्फ फर्ज रोजों में ही पूरा हो जाएगा, तो मैं फिर ये शव्वाल के नफली रोजे कब रखूंगी। तो फिर ऐसे लोग क्या करें, पहले वो मसनून ये जो 6 रोजे हैं ना सुन्नत से साबित है, इनको पहले रख लें, क्योंकि ये फिर पूरे साल में आप नहीं रख सकते दोबारा। हाँ, फर्ज रोजों को आप किसी वक्त भी साल में रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी के 5-6 छूटे हुए, उसको पता है कि मैं दोनों रख सकती हूँ, तो पहले अपने फर्ज को पूरा करें, क्योंकि ये फर्ज है, फर्ज इंसान के ऊपर रह जाएगा, अगर वो मर गया तो फर्ज तो माफ नहीं है ना, तो इसलिए फर्ज को पूरा करना बहुत जरूरी है। हम दुनिया से जाएं, हमारे ऊपर कोई फर्ज ऐसा ना हो कि जो रह गया हो, जिंदगी का तो नहीं पता होता ना, लेकिन ये ना करिएगा फर्ज को डिले करते करते, यहां तक बाज लोग ले आते हैं ये पूरे साल में कभी भी तो रख सकती हूँ, कभी भी तो रख सकती हूँ, करते करते अगला रमजान आ जाता है, तो जल्दी से जल्दी इनको पूरा करने की कोशिश करिएगा। अल्लाह ताला हमारे क़याम सियाम को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी इस बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह जो हमने दुआएं की हैं पूरे रमजान में अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी जो हमारी रातों की इबादत है, इबादत कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर रातों का जो जागना है अल्लाह इसको ही कबूल कर लेना, कुछ कर तो नहीं ऐसा सके कि इसके अंदर कोई खास इबादत कर सके, अल्लाह ताला इसको ही कबूल कर लेना, अल्लाह हमारी ठीकरियों को कबूल कर ले, हमारे ऊपर रहम खा ले अल्लाह ताला, हमारे ऊपर तर्स खा के हमें माफ़ फरमा दे, और अल्लाह ताला अगले रमज़ान तक हमारे ईमान में इजाफा फरमाए, अगले रमज़ान तक हमें बेहतर कर दे ईमान में, अपनी फरमा बरदारी में और बढ़ा दे, अपनी मोहब्बत में और बढ़ा दे, अगला रमज़ान जब आए तो उससे हम आज से ज़्यादा बेहतर हों उसकी फरमा बरदारी में, तकवा में, ईमान में। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो जाए, अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमा दे, आज हम जब रमज़ान से निकलें तो ऐसे निकलें जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ बच्चा गुनाहों से धुला हुआ होता है, ऐसे अल्लाह ताला हमें पाक फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन,
برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.